हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत को बार बार अपनी बदकिस्मती पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो सोच रहा था, जिसके शरीर से, जिसकी बनाई हर चीज से उसे मोहब्बत है, वो उसकी बनाई कोई भी चीज नहीं खा सकता। क्यों? ऐसा क्यों? इतनी नफरत क्यों करती है मुझसे? विक्रांत बहुत गुस्से में था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने एक दुष्ट मुस्कान लाते हुए कहा, कर लो जितनी नफरत करनी है, कर लो। तुम्हारी बनाई मीठी खीर भी मेरे लिए जहर साबित हुई है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हर हाल में तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम्हारा शरीर मुझे कोई नहीं छीन सकता। मुझे हर हाल में तुम्हारा शरीर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर हाल में तुम्हें पाकर रहूंगा। विक्रांत ने एक पल में ही अपना पूरा रूप बदल लिया था। वो पहले जैसा सामान्य होकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे अपनी माँ से मिलने जाना था। उसने सोच लिया था कि अमन की शहर के बाहर की सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकालेगा और हर जगह जाकर अपनी माँ के बारे में पता लगाएगा। दूसरी ओर करिश्मा जी और अमन तारा की खूब तारीफ कर रहे थे। उन्हें खीर का स्वाद बहुत पसंद आया था। उन्होंने जल्दी से विक्रांत की कटोरी भी खाना शुरू कर दिया। तारा उन्हें हैरानी से देख रही थी। वे लोग इतनी जल्दी खा रहे थे मानो कोई उनसे छीन लेगा। तारा यह देखकर हंसने लगी। फिर तारा को उस फूल का ध्यान आया जो उसे कुछ कहना चाहता था। तारा ने करिश्मा जी और अमन से कहा, अच्छा अब आप लोग मुझे कुछ गिफ्ट तो दीजिए। तारा के अंदर उस जज्बा को अच्छी तरह से पता था, अगर कोई किसी के हाथ का खाना पहली बार खाता है तो उसे कुछ गिफ्ट देते हैं। करिश्मा जी उसकी ओर देखते हुए बोली, बेटा तुमसे खीर तो बनवा ली, लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल ही गई। तारा ने थोड़ा नाराजगी का नाटक करते हुए अमन की ओर देखा। अमन भी अपनी नजरें चुरा रहा था। फिर वे दोनों माँ बेटा एक साथ मुस्कुराने लगे। तुम्हारे गिफ्ट तैयार हैं, हम लोग अभी जाकर लेकर आते हैं, तुम तब तक गार्डन में इंतजार करो। वे दोनों माँ बेटा तारा के लिए गिफ्ट लेने अपने अपने कमरों में चले गए। तारा को मौका मिल गया था। उसने गिफ्ट के बहाने उन्हें कमरे में भेज दिया ताकि वो उस फूल से बात कर पाए। फूल ने उसे आंखों ही आंखों में अपने पास बुलाया था। इसका मतलब साफ था कि वो उसे कुछ बताना चाहता था। तारा जल्दी से फूल के पास गई। जैसे ही फूल ने तारा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तारा ने उदास देखकर कहा, क्या हुआ खूबसूरत फूल, तुम क्यों रो रहे हो और ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? फूल ने उसकी ओर देखा और बोला, रानी परी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें और अकेले कहीं भी मत जाएं। तारा हैरान हो गई, क्योंकि उस फूल ने कहीं ना कहीं विक्रांत को देख लिया था और विक्रांत के अंदर चल रहे जज्बा को भी देख चुका था, लेकिन वो सीधे सीधे विक्रांत का नाम नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने तारा को पहले ही चेतावनी दे दी थी। तारा को हैरानी हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला था, लेकिन फिर तारा बोली, आप फिक्र मत कीजिए खूबसूरत फूल, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं हर किसी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। फूल हल्का सा मुस्कुलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अब आपके सामने ऐसी ताकत आने वाली है जो आपको बहुत परेशान करेगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको इस वक्त ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तारा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात पर ध्यान रखूंगी और अपना पूरा ख्याल रखूंगी। फूल मुस्कुराया और बोला, अगर आपको कभी कुछ समझ में ना आए तो मेरे पास जरूर आइएगा। तारा ने हाँ में सर हिला दिया। वो जल्दी ही गार्डन में कुर्सी पर जाकर बैठ गई, क्योंकि करिश्मा जी और अमन किसी भी वक्त आ सकते थे। दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित काली पहाड़ी पर पहुंच चुका था। उसे उसके गुरु जी का बुलावा आया था। अमित अपने गुरु के सामने खड़ा हुआ। अमित ने अपने गुरु को देखकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु के कहने पर वो उठ गया। अमित ने कहा, गुरुजी आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे यहाँ आने का कारण। काली शक्तियों के गुरु ने अमित को कुछ देर देखा और बोले, हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तुम्हारी इस मामले में कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। हमने उस अनजान शक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं। इसका मतलब साफ है, वो अनजान शक्ति बहुत शक्तिशाली है। हम तपस्या में बैठकर भी उस अनजान शक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें एहसास हो गया है कि हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे। अमित के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसे लगा था कि उसके गुरु को सारी चीजें पता होंगी, लेकिन अब उसे अपने गुरु से कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसके गुरु बोले, इन सब के चलते हम तुम्हें एक बात का जवाब दे सकते हैं। ये जो भी काली शक्ति है और जो भी अनजान शक्ति है, हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये काली शक्ति है या कुछ और, पर इसका सीधा संबंध उस लड़की से है। अमित हैरान हो गया और खुद को संभालते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? किस लड़की से संबंध है? प्लीज क्लियर बताइए। काली शक्तियों के गुरु बोले, वो जिन महाराज, अमन की पत्नी तारा। तारा का इस अनजान शक्ति से कुछ लेना देना है। हमें पूरा यकीन है कि वो लड़की इसके बारे में कुछ न कुछ जानती होगी। अमन बहुत हैरान और परेशान हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसान का एक अनजान शक्ति से क्या लेना देना हो सकता है। उसने अपने गुरु के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, लेकिन गुरुजी, वो एक मामूली सी लड़की है। एक मामूली लड़की का एक काली या अनजान शक्ति से क्या लेना देना? गुरुजी बोले, बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो मामूली सी लड़की कोई आम लड़की नहीं है। वो शक्तिशाली जिन महाराज की पत्नी है और उसके अंदर एक शक्तिशाली वंशज पल रहा है जो हर शक्ति का काल है। तुम सोच भी नहीं सकते हो, उससे ज्यादा ताकतवर ना तो पृथ्वी लोक में और ना ही किसी लोक में कोई है। अमन ध्यान से सुन रहा था और उसे लगने लगा था कि अमन के वजह से ही तारा के पीछे वो अनजान शक्ति पड़ी होगी। अमित ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे उस काली शक्ति या अनजान शक्ति से कोई खतरा नहीं है ना? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन उस अनजान शक्ति से बहुत कम। उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर कहूँगा, तुम जितना हो सके उस लड़की से दूर रहना। अमित का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि अमित तो तारा के शरीर को अपना जुनून बना बैठा था। वो उससे दूर कैसे रह सकता था? लेकिन वो ये बात अपने गुरु को नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जैसे ही अमित जाने के लिए पलटा, उसके गुरुजी ने उसे रोका और बोले, अमित, एक और बात ध्यान रखना, तुम औरतों को लेकर जो ये नज़र है वो तुम्हें बदलनी होगी, वरना ये औरतों के बारे में आने वाले बुरे ख्याल एक दिन तुम्हें ले डूबेंगे और तुम्हारे जीवन का अंत कर देंगे। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया।